हम लोग इसको पढ़े थे, काम क्रोध हृदास हैया तार लाथी खाए, भ्रमिते भ्रमिते यदि साधु वैद्य पाए, तार उपदेश मंत्रे पिशाची पलाए, कृष्ण भक्ति पाए तबे कृष्ण निकट जाए। काम और क्रोध के दास होकर उनकी लात खा खा करके जब इस जगत में भ्रमण करता रहता है और किसी तरह साधु वैद्य को पाता है। इस पे महाराज जी को जो बोले थे वो कल बताना भूल गया मैं। लात का अर्थ क्या है? लात का अर्थ ये है कि मानो कोई व्यक्ति जूता पहना हो जिसमें लोहे की कीले हो और वह किसी की आंख पे मारे, कान पे मारे, मतलब मर्म स्थान पे मारे, वह है इस प्रकार से काम और क्रोध की लात खाना। समझ रहे हैं आशय कि हमारे जो ज्ञानेन्द्रियां हैं उन्हीं पे बार बार काम प्रहार करता कि देखो वो देखो, ये छुओ, ये खाओ, ये सूंघो इत्यादि, और इसके कारण से। और लात खाने का मतलब समझ रहे हैं, कोई व्यक्ति काम नहीं करता है तो क्या कहते हैं? लातों के भूत बातों से नहीं मानते, समझ रहे हैं? यानी लात मार मार के जैसे व्यक्ति को जबरदस्ती कोई काम कराए उस प्रकार से काम वासना काम कराती है। आपको लगता है नहीं करती है? आपको लगता है ऐसा नहीं करती है? कितना परिश्रम व्यक्ति कर रहा है। प्रभुपाद जी इसके सब की तो सर्वविदित बात है, इसमें कोई विरोध नहीं कि अगर किसी से काम कराना है तो उसे शादी करा दो, कोई विरोध? अवनीश प्रभु ये कहना चाहिए अब तो कोई विरोध नहीं पहले बोला जाता तो शायद विरोध करते, लेकिन ये बात हमारे एक प्रभु जी हैं, वे सीनियर गॉड ब्रदर हैं दामोदर प्रभु, कह सेवा के लिए तो आप गृहस्थ भक्तों को ही रखिए। समझ में आ गया वो भगवान से ममता हो तो उसमें काम करे तो संदेह है, लेकिन परिवार से ममता है तो व्यक्ति करता ही है कि नहीं? और हमें अरे वक्त में बगल में ब्रह्मचारी बैठे होते हैं, उनका कुछ मतलब क्या कौन सा होता है, बीटीजी होता है ना, बैक टू गृहस्थ आश्रम, क्या बोलते हैं ब्रह्मचारी टू गृहस्थ आश्रम होता है। हमने कहा भाई भाई खाने को तो मिल ही रहा है अच्छे से, सोने को मिल रहा है भाई, तो कुछ है नहीं तो क्या इसके लिए इतना आपको क्या कुछ मिल जाएगा? कहते नहीं प्रभु जी, अनुभव करने से समझ में आता है। ठीक है फिर, ऑल द ब्लेसिंग्स व्हाट यू कैन डू। तो इस प्रकार से हम लोग जगत में भ्रमण कर रहे हैं और ऐसा मत सोचिए कि इस जगत में दुख है, क्या इंद्र बड़े सुखी हैं? आप लोग कभी सोचते नहीं कि सची देवी उनकी पत्नी है फिर भी वह अन्य स्त्रियों के प्रति आकर्षित हो जाते हैं, वो भी इस जगत की स्त्रियां, मतलब पृथ्वी लोग की। आपको आज तक कोई एक्सप्लेन कर सकता है इसको? मेरे तो आज तक समझ में नहीं आया, जब सची उनकी मतलब पत्नी है और इतनी सुंदर सुंदर अप्सराएं हैं फिर भी वह आकर्षित हो जाते हैं, ये क्या लॉजिक है? तो ये लात खाना है तो हुआ, बताइए, नहीं चाह रहा है फिर व्यक्ति भी कर रहा है। आप देखिए कितने लोग शराब पीते हैं, मांस खाते हैं, उनको ये पता भी है सिद्धांतिक रूप से कि ये पाप है, फिर भी वो खींच ले जाते हैं कि नहीं। कल मैं थोड़ा सा मतलब अतिरिक्त था इसको व्याख्या कर रहा हूं, व्याख्या बहुत महत्वपूर्ण है ये, और आप थोड़ा जरा सा लाइक मनन करें इसके ऊपर तो आप देखेंगे कि अगर हम भक्तों को संग प्राप्त नहीं होता तो हमको शायद ये भी पता नहीं होता कि हम काम के दास हैं। डू यू अग्री? ये भी पता नहीं होता कि हम किस प्रकार से अपने बस काम इच्छा को ही पूर्ण करने में लगे हैं। केवल स्त्री पुरुष का आकर्षण नहीं है, और जो कोई भी इच्छा है वो सब काम में डाल दी जाएगी। अखबार पढ़ने की इच्छा, क्रिकेट खेलने की इच्छा, वो सब कुछ, उसका कृष्ण से कोई संबंध तो है नहीं। और आपने देखा एक प्रकार का जो एक हंच, इंग्लिश में कहते हैं हंच, मतलब हंच नहीं कहेंगे इसको, एक डिजायर रहती है, नहीं इसे करना है, इसे करना है, तुम करोगे नहीं तो कैसे सुखी हो जाओगे, किस तरह की भावना आती थी ना। और आप प्रैक्टिकल देख रहे हैं, तार उपदेश मंत्र पिशाची पलाय, कि अपने जीवन में नहीं देख रहे कितनी कितनी भोग की वासना एकदम ऐसे गायब हो गई जैसे जैसे लगता है क्या मी, कैसे मैं उसमें कैसे प्रवृत्त भी हो सकता था, है कि नहीं? मैं नहीं समझ रहा हूं एक भी भक्त यहां पे कभी सोचा होगा चाय पीने के लिए, जब कर मैं बोल रहा हूं तो याद आ रही होगी, जब में कभी चाय पीने की आदत नहीं होगी, नहीं याद आती होगी ना, है कि नहीं? और नहीं तो कितने लोग एडिक्ट होते हैं चाय के लिए, एक छोटा सा एग्जांपल, और बाकी इसमें कुछ भी जोड़ लीजिए। तो ये प्रैक्टिकल होते हुए देख रहे हैं कि नहीं, जो महाप्रभु कह रहे हैं वो अपने जीवन में हम देख रहे हैं। भक्तों ने हमें अगर कृष्ण मंत्र के बारे में बताया कृष्ण की सेवा करो इत्यादि इत्यादि, तो आप भगवान की सेवा कर रहे हैं, अपने आप जो माया को सेवा करने की इच्छा है वो समाप्त हो रही है। और एक इच्छा होती है ना कि आज भागवत में क्या सुनेंगे, जप करेंगे, सुबह उठेंगे, है कि नहीं? आप इस परिवर्तन को अपने हृदय में देखिए, जो महाप्रभु बोल रहे हैं वो एक्चुअली होता है। ऐसा नहीं कि खाली बोली जा रही है बात तो हमसे रिलेट नहीं कर पा रहे, तो फिर हमारी श्रद्धा उसके ऊपर होगी। कृष्ण भक्ति पाए तब कृष्ण निकट जाए, तो बारंबार हरे कृष्ण मंत्र को उच्चारण के द्वारा, कथा श्रवण के द्वारा व्यक्ति को समझ में आता है, भक्ति करता है, भगवान के पास चला जाता है। ठीक है। हलादनी माता जी कह रही हैं, मतलब उन्हें कभी चाय नहीं पी। माता जी कलयुग में तो एक ही संत आप ही हैं और तो कोई है ही नहीं। मुझे एक व्यक्ति, हम लोग बस में थे, ऐसी प्रकार से किताब वितरण कर रहे थे, तो व्यक्ति बोला हमारे जैसा संत होगा कहाँ, देखो चाय हम नहीं पीते, शराब हम नहीं पीते, मांस हम नहीं खाते। हमने कहा यही पीने, यही नहीं करने से आप संत हो गए। शिला प्रभुपाद जी से भी एक बार उनके शिष्य ने पूछा कि हम ये चार नियम का पालन करते हैं तो हम डिवोटी हो गए, तो प्रभुपाद कहते हैं नहीं, तुम अभी इंसान हुए हो, अभी तुम इंसान हुए हो, डिवोटी तो आगे जाके होगी। तो मैं खाली इतना बोल रहा हूँ कि बहुत सारी बुरी आदतें व्यक्ति की चली जाती हैं। अब उसके ऊपर प्रभुपाद जी बहुत सुंदर श्लोक भक्ति सामे सॉरी चैतन्य महाप्रभु कोट कर रहे हैं यहाँ पे, ये मेरे पीछे बोलेगा सुन गाएंगे। ये प्रथम स्कंद भागवत के पहले श्लोक की तरह है, नहीं दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। कामादीनां कति न कतिधा पालिता दुर्निदेशा,
कामादीनां कति न कतिधा पालिता दुर्निदेशा।
पहले वाले श्लोक इतने नहीं है, अपना ही शैली है। तेषां जाता मयि न करुणा नात्रपा नोपशान्तिः,
तेषां जाता मयि न करुणा नात्रपा नोपशान्तिः।
उत्सृज्य तान् अथ यदुपते साम्प्रतं लब्ध बुद्धि,
उत्सृज्य तान् अथ यदुपते साम्प्रतं लब्ध बुद्धि।
त्वामायातः शरणम् अभयं मां नियुङ्क्ष्वात्मदासये, कामादीनां कति न कतिधा पालिता दुर्निदेशा,
कामादीनां कति न कतिधा पालिता दुर्निदेशा।
तेषां जाता मयि न करुणा नात्रपा नोपशान्तिः,
तेषां जाता मयि न करुणा नात्रपा नोपशान्तिः।
उत्सृज्यतान् अथ यदुपते साम्प्रतं लब्ध बुद्धि,
साम्प्रतं लब्ध बुद्धि।
त्वामायातः शरणम् अभयम् मां नियुङ्क्ष्वात्मदासये,
त्वामायातः शरणम् अभयम् मां नियुङ्क्ष्वात्मदासये।
बहुत सुंदर, एक बार फिर से बोलेंगे। ये श्लोक मैं कई बार कोट कर चुका हूँ, आप लोग आंखों के सामने है और याद करने का प्रयास कीजिएगा। कामादीनां कति न कतिधा पालिता दुर्निदेशा,
कामादीनां कति न कतिधा पालिता दुर्निदेशा।
तेषां जाता मयि न करुणा नात्रपा नोपशान्तिः,
तेषां जाता मयि न करुणा नात्रपा नोपशान्तिः।
उत्सृज्यतान्नथ यदुपते साम्प्रतं लब्ध बुद्धि,
यदुपते साम्प्रतं लब्ध बुद्धि।
त्वामायातः शरणम् अभयं मां नियुङ्क्ष्वात्मदासये,
त्वामायातः शरणम् अभयं मां नियुङ्क्ष्वात्मदासये।
मुझे अभी याद आ रहा है कि इसका अन्वय भी मिल जाएगा आगे से, अन्वय भी आगे श्लोकों में अन्वय भी हम डाल सकते हैं। पहले देखते हैं अनुवाद। हे प्रभु, काम वासनाओं के अवांछित आदेशों की कोई सीमा नहीं है। यद्यपि मैंने इन इच्छाओं की इतनी सेवा की है, किंतु उन्होंने मुझ पर रंच भर भी दया नहीं दिखलाई। उनकी सेवा करने में न तो मुझे लज्जा आई, न ही मैंने कभी उन्हें त्यागने की इच्छा की। किंतु हे प्रभु, हे यदुवंश के शिरोमणि, हाल ही में मेरी बुद्धि जागृत हुई है और अब मैं उनका परित्याग कर रहा हूँ। अपनी दिव्य बुद्धि के कारण मैं अब इन अवांछित इच्छाओं का पालन करने में से मना करता हूँ और आपके अभय चरण कमलों में शरण के लिए आया हूँ। कृपया मुझे अपनी निजी सेवा में लगा दीजिए। पहले तात्पर्य पढ़ते हैं, फिर इसका अनुवाद देखेंगे। यह श्लोक भक्ति रसामृत सिंधु में भी आया है। जब हम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे इस महामंत्र का जप करते हैं, तब हम यह कह रहे हैं कि हरे अर्थात हे हरे हरे नोट नहीं, मेरे में ही लिखा हुआ है, ऐसे नहीं आपके, ठीक है। हरे हो सकता हो कोई भगवान से हरे नोट मांग रहा हो। हरे अर्थात हे भगवान की शक्ति, हे कृष्ण इस तरह हम भगवान को तथा उनकी आध्यात्मिक शक्ति को राधा कृष्ण, सीताराम या लक्ष्मी नारायण के रूप में संबोधित करते हैं। भक्त सदैव भगवान तथा उनकी अंतरंग शक्ति प्रेयसी से प्रार्थना करता है, जिससे वह उनकी दिव्य प्रेम भक्ति में लग सके। जब बद्धजीव अपनी वास्तविक आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त कर लेता है और भगवान के चरण कमलों में अपने आप को पूर्णतया समर्पित कर देता है, तब वह भगवान की सेवा में लगना चाहता है। यही जीव की वास्तविक वैधानिक स्थिति है। देखिए, ये बहुत गंभीर श्लोक है। क्यों? हरे कृष्ण मंत्र करते करते पहले तो हमें कुछ समझ में नहीं आता है, लेकिन जब करते करते जब आत्मा की जागृति होने लगती है, तब हमको समझ में आता है कि हम बहुत ही विकट परिस्थिति में हैं। देखिए, हैं तो हम लोग चिन्मय जीव, और कहाँ हैं इस एकदम जड़ शरीर में, जहाँ हम अपने आप को भूले हुए हैं कि नहीं। तो इस प्रकार से जब जीव की जागृति होती, इसे जीव जागृति का श्लोक कह सकते हैं। अवेकनिंग, समझ, अवेकनिंग ऑफ द जीवा, हरे कृष्ण मंत्र के उच्चारण के द्वारा जब थोड़ी जीव की जागृति होती, तब इस प्रकार की बात सोचता है कि हमने कितना समय अपनी भोग इच्छाओं को पूर्ण करने में व्यर्थ किया। कृष्ण, वो समय का मतलब इसमें सोचेगा कि एक जीवन, कितने कितने जीवन हमने व्यर्थ किए हैं। पूरा पिछले का जन्म नहीं समझ में आ रहा है, इस जीवन को देख रहे हैं ना। भगवान से स्वतंत्र रहकर रहने का जो भी हमारा प्रयास है, क्या वो हमको सुखी कर पाया? क्या हमारे हमारे माता पिता या और उन लोगों को सुखी कर पाया? नहीं कर पाया। तो कह रहे हैं, देखिए सब शब्दों को, अर्थ को देखेंगे समझ में आएगा। कामादि नाम, तो काम आदि मतलब काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद तथा मात्सर्य जैसे अपने स्वामियों का, कति मतलब कितने और ना मतलब नहीं, और कतिता मतलब कितने प्रकार से, पालिता मतलब आज्ञा पालन किया। ये देखिए, अब इसको देखिए, कामादि नाम कति न कतिधा, काम क्रोध लोभ मोह मात्सर्य आदि के कितने ही, मतलब ऐसा कौन सा आदेश था जिसका पालन मैंने नहीं किया, यह पहली ज्ञान का अर्थ। पालिता, मैंने पालन किया। तो मान लो कोई पूछे, तो उसका मतलब है कि आपको सही गाइडेंस दे रहे होंगे, तभी तो आपने पालन किया। तो कहते हैं ना दुर्निर्देशा, ये दुर्निर्देश देने वाले थे, ये मुझे बारंबार जन्म मृत्यु के चक्र में गिराने वाले थे। तो मान लो कोई पूछे कि भाई आप इतने जन्म जन्मांतर सेवा किए हैं, तो कोई कहेगा अब चलो रिटायर करते हैं। यहाँ पे भी हम देखते हैं कि भाई 50 कितना, 55, आई डोंट नो, 55 उम्र है, 62 हो गई अब, 62 साल में रिटायर करते हैं, 60 पे कर देती, ठीक है। तो 60 साल के बाद तो गवर्नमेंट रिटायर कर देती, फिर कहती कि पेंशन भी देंगे, तो कुछ करना है ना यहाँ पे कि रिटायरमेंट करते, चलिए अब आपने इतना सेवा कर लिया, अब आपको और सेवा करने की जरूरत नहीं है। कुछ भी है, उफ कृष्णा, छोटी से चीड़ भी परेशान करती है। कुछ भी हो, 60 हो 62 हो 70 हो या कुछ भी हो, लेकिन रिटायरमेंट करने का मतलब क्या, अब आपने बहुत सेवा की है, अब आपको सेवा करने की जरूरत नहीं है, ऐसा होता है ना। लेकिन यहां क्या कह रहे हैं, तेषां जातं मयि न करुणा, ये जो 6 स्वामी है, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, इनको मुझ पे करुणा नहीं आई कि भाई अब इसने जन्म जन्मांतर सेवा की है तो छोड़ दें इसको। अच्छा, उनको करुणा नहीं आई तो आपको शर्म नहीं आई उनकी सेवा करते हुए? कहते हैं ना ना त्रपा, मुझको भी शर्म नहीं आई इनकी सेवा करने में। संस्कृत का एक श्लोक है, कामातुरम न भयम न लज्जा, जो व्यक्ति कामातुर हो गया, न तो उसे कोई भय होता है, न कोई लज्जा होती है वो गलत कार्य करने में। इसीलिए आप पढ़ोगे, प्रहलाद महाराज कहते हैं कि भक्त के लिए या आत्म साक्षात्कारी पुरुष के लिए जिस पथ पर चल रहा है, काम सबसे खतरनाक है, क्योंकि काम प्रेम के बिल्कुल विपरीत है ना। काम में क्या, हम अपनी इंद्रियों की इच्छा चाहते हैं, प्रेम मतलब भगवान की सेवा, भगवान की इंद्रियों के सुख चाहने की इच्छा, तो एकदम उसके विपरीत है, जीव को बिल्कुल विमुख कर देगा। इसीलिए भगवान गीता में कहें, जय ही शत्रु महाबाहो काम रूप दुरासदम, इस काम रूप शत्रु से संधि करके तुम जय रहो। नहीं, जही का मतलब होता है मार डालो, याद आ रहा है, क्षत्रिय के लिए साम दाम दंड भेद होता है। तो कह रहे हैं ये जो काम रूपी शत्रु है, ये साम दाम और भेद से मानने वाला नहीं है, इसको दंड ही देना होगा, मृत्यु दंड देना होगा, ऐसा करके पढ़ चुके हम, पढ़ा चुके हैं गीता चर्चा यथारूप में। तो न त्रपह, समझ रहे हैं, मुझे कोई शर्म नहीं आई इसकी सेवा करने में, न उपशांति और ना ये शमित हुआ। आप जानते हैं कि काम को जितना आप देंगे, उसमें घी डालेंगे, तो अग्नि के समान और भड़कता जाएगा। काम रूपेण कौंतेया दुष्पुरेण नलेन चह, दुष्पुर है मतलब इसको कितना भी संतुष्ट करो ये संतुष्ट नहीं होने वाला और अग्नि के समान ही धधकता रहता है। तो अब क्यों आए मेरे पास, मान लो भगवान कहें जो आप सेवा कर ही रहे तो करते रहिए। तो कहते हैं उत्सृज्यतान, उत्सृज्यतान अथ यदुपते सांप्रतम लब्ध बुद्धि। सांप्रतम मतलब होता है संप्रति, मतलब अब इस समय। हे यदुपति अर्थात यदु के स्वामी कृष्ण, उत्सृज्यतान, उत्सृज्यतान का अर्थ है उत्पन्न हुई है, कहाँ है नहीं, उत्सृज मतलब त्याग कर, इनको मैं त्याग रहा हूं, इनकी सेवा को त्याग रहा हूं। और संप्रतान अब लब्ध बुद्धि अर्थात मेरी बुद्धि जागृत हो गई है। त्वाम आयातः शरणम, मैं आपकी शरण में आया हूं, अभयम माम मुझको अभय प्रदान कीजिए। कैसे, नियुंक्ष्व आत्मदास, अपने दास के रूप में सेवा प्रदान करके। क्या हरे कृष्ण मंत्र का यही अर्थ है कि नहीं है? माधवी माता जी आप बैठ सकते हैं कुर्सी पे, अगर आपको ऐसी दिक्कत है मतलब कंफर्टेबल होकर बैठे, कोई दिक्कत नहीं। माता जी की कुर्सी ला दीजिए, ठीक है, नाइसली आपको जाओ, कंफर्टेबली बैठे माता जी, कोई दिक्कत नहीं, बहुत स्पेस है, बैठिए अब आराम से बैठ सकते हैं। अरे कोई दिक्कत नहीं, बैठ जाइए आराम से, बैठ जाइए, कोई दिक्कत नहीं, यू आर आवर गेस्ट, नो प्रॉब्लम, सिट प्रॉपर्ली, सीरियसली। तो ये समझ में आ रहा है श्लोक, फिर से मैं बता रहा हूं, कितने करोड़ों करोड़ों जन्म से भक्त कह रहा है कि मैंने काम आदि की सेवा करी। काम आदि मतलब काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य। ये श्लोक समझ लीजिए, फिर इसको एकदम मग लीजिए, गा गा कर, ये हमारी स्टोरी सुना रहा है, किसी और की नहीं। इनको मैंने पाला, इनके पालन किया है, तो क्या इन्होंने सही निर्देश दिया? कहते ना, दुर्निर्देश दिया, बारम्बार मुझे जन्म मृत्यु के चक्र में धक्का दे दिया है। तेषाम जात मई न करना, और उनको कोई मुझ पर मतलब दया भी नहीं आई कि बेचारा वापस माँ के गर्भ में जा रहा है, कितना दुख भोगेगा, ना अब तो छोड़ दो उसको ना। और मुझे भी शर्म नहीं आई, ना तृपा, मुझे भी कोई शर्म नहीं आई सेवा करने में, ना उपशांति हो, नहीं शांत हो रहा है ये, उस सृजता, लेकिन अब मैं इनको त्याग रहा हूं। अथ अथ मतलब अब, इसलिए मैं इनको त्याग रहा हूं। हे यदुपति, हे कृष्ण, सांप्रतम लब्ध बुद्धि, मेरी मुझको बुद्धि आ गई है। त्वाम आयातः शरणम, इसलिए मैं आपकी शरण में आया हूं, अभयम माम मुझको अभय प्रदान करें। नियुंक्ष्वात्मा दासे, मुझे अपनी सेवा में नियोजित की। यही हरे कृष्ण मंत्र का अर्थ है। कितना सुंदर है। तो हरे कृष्ण मंत्र जब कर रहा है व्यक्ति, हो सकता हो शुरुआत में उसकी इस प्रकार की बुद्धि नहीं हो, लेकिन बारंबार श्रीमद् भागवतम के श्रवण के द्वारा, जप करने के द्वारा बुद्धि प्रखर हो जाती है। आपको कुछ याद आ रहा है कि गुरु नारियां बोल रही थी कि क्या शब्द था कि ये कृष्ण ही शुद्ध बुद्धि प्रदान करने वाले हैं, ना मार्ष्टुम अर्हति शब्द था, कि आपके अलावा, इन भगवान के अलावा कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो बुद्धि को शुद्ध करने वाला हो। बात ये थी, उनके तीसरा वाक्य था कि योगी जन इनको भक्ति के द्वारा, भक्त उत्कलित अमल आत्मना, भक्ति से उत्कंठित अमल बुद्धि के द्वारा देखते हैं, और इनके अलावा, भगवान श्री कृष्ण के अलावा ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो बुद्धि को शुद्ध करे। कोई समझ में आ रहा है, जब हम भगवान के बारे में श्रवण कीर्तन करते हैं तो बुद्धि भगवान शुद्ध कर देते हैं, और दिखने लगता है कि मैं इस जगत में अपने भोग इच्छाओं को पूर्ण करके कहीं नहीं पहुंच रहा, आई एम नॉट गोइंग रीचिंग एनीवेयर, मुझे कोई संतुष्टि प्राप्त नहीं हो रही, एक, और दूसरा जो कुछ मिल भी रहा है उससे मेरा फ्यूचर कुछ सुधर नहीं रहा है। भगवान तो इतने कृपालु हैं कि बहुत सारी इच्छाओं को तो गायब ही कर देते हैं। और ये एक बहुत अच्छा अनुभव मैं देख रहा हूं, काउंसलिंग भी करते हैं, भक्तों से बातचीत करते हैं, कि मानो कोई इच्छा रह भी जाए और जिसकी वजह से वो गिर जा रहे हैं, तो भी वह मतलब लेमेंट करेंगे इसको, अपनी भर्सना करते हैं, मतलब समझ रहे हैं, इनकी इन काम आदि की सेवा किए हैं तो तुरंत तो छोड़ने वाले नहीं है। यहाँ पे भी नौकरी छोड़ने से पहले एक महीने का रिजर्वेशन देना पड़ता है, तो आप जिसकी आपने अनादि काल से सेवा करी वो तुरंत तो ना छोड़ देंगे अपना। तो एक संघर्ष होता है कि भक्त जो है वो पूरी तरह छोड़ना चाहता है, लेकिन वो फिर उभर जाती है। समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? लेकिन कम से कम भक्त का हृदय शुद्ध हो गया है, इसका प्रमाण क्या है? अगर वह उसमें प्रवृत्ति भी होता है तो उसको उसमें रुचि नहीं होती। ये सब बातें आप इसमें सीखेंगे, कुछ कुछ बातें आएंगी इस तरह से, बहुत अच्छा चैप्टर है। तो इस प्रकार से बता रहे हैं कि ये श्लोक क्यों कोट किया गया, काम क्रोध आदि की लात खा खा करके व्यक्ति जब भक्तों के संग में आता है तब वो समझता है कि उसे कृष्ण की सेवा करना चाहिए। आप सभी लोग अपने जीवन में देख सकते हैं कि जब भक्त बोल रहे थे आपको कि एक माला जप करो, तब एक मन में प्रश्न होगा कि हम क्यों करें। कुछ भक्त तो बोलते हैं हम लोग डर रहे थे कि ये लोग क्या बता रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे देखिए किस प्रकार से हम लोग भगवान की कृपा से काम वासना से मुक्त हो रहे हैं, कितनी कितनी बुरी आदत से हम छूट जा रहे हैं, है कि नहीं। ये बहुत प्रैक्टिकल प्रभाव है। अब है कृष्ण भक्ति को ही, ये अध्याय ही है अभिधेय तत्व का वर्णन कि क्या करें साधन, तो उसका वो सिद्धांत स्थापित कर रहे हैं कि भक्ति ही अभिधेय है। कृष्ण भक्ति हो या अभिधेय प्रधान, भक्ति मुख निरीक्षक कर्म योग ज्ञान। कितना सुंदर है, कृष्ण भक्ति ही अभिधेय प्रधान है। सारे साधनों में सर्वश्रेष्ठ क्या है, भगवान कृष्ण की भक्ति, और भक्ति मुख निरीक्षक, भक्ति का मुख देखते हैं। कितना सुंदर शब्द है, भक्ति का मुख देख रहे हैं, हम पर भी कुछ कृपा करिए ना। इस प्रकार से कौन देखते हैं, कर्म योग ज्ञान, मतलब कोई कर्म योग कर रहा है, उसके बाद अष्टांग योग कर रहा है और ज्ञान योग कर रहा है, और अपने फल की प्राप्ति के लिए वो भक्ति का मुख देख रहा है। कुछ समझ रहे हैं, आप कुछ कृपा कीजिए तो हमारी जो इस पद्धति है उसका फल उस व्यक्ति को, साधक को मिलेगा, कुछ ग्रहण कर पा रहे हैं। अगर कोई कर्मयोग कर रहा है भक्ति छोड़ करके, तो उसे कुछ भी नहीं मिलेगा, भगवान को ही आपने हटा दिया पिक्चर से, तो कुछ भी नहीं मिलेगा। और आपने सुना है, से कई बार लोग आर्ग्यूमेंट करते हैं, हम अच्छे कर्म करें हमें भगवान के सामने मत्था टेकने की क्या जरूरत है, आपने सुना है सर, हमें जप करने की क्या जरूरत है। अगर जरा सा भी भक्ति मिश्रण ना हो, भगवान के स्वामित्व को ना स्वीकार किया जाए, भगवान के प्रति अपराध किया जाए, तो ये कुछ भी नहीं देते। मोघाशा मोघ कर्माणो मोह ज्ञान विचेत सह राक्षसी मासुरीम चव प्रकृति मोहनीम श्रता। जो व्यक्ति कृष्ण को समान मान रहा है, इंसान मान रहा है, और वह कुछ साधन कर रहा है ज्ञान का कर्म का, कुछ नहीं मिलने वाला उसको। ये स्वयं भगवान के शब्द हैं, क्योंकि सभी यज्ञों के भोक्ता कौन है, कृष्ण है। तो समझ में आया, ध्यान दीजिएगा, ये जितने भी अन्य साधन हैं वह भक्ति की अपेक्षा कर रहे हैं, लेकिन भक्ति इनमें से किसी की भी अपेक्षा नहीं करते। अपेक्षा मतलब एक्सपेक्टेशन, आशा जी, बहुत अच्छा ये श्लोक है। कृष्ण की भक्ति ही जीव का मुख्य कार्य है। क्वाइट इंटरेस्टिंग। यद्यपि बद्ध जीव की मुक्ति के विविध साधन हैं यथा कर्म ज्ञान योग तथा भक्ति, किंतु ये सब भक्ति पर आश्रित हैं। आपने पहली लाइन देखी, इसको देख के क्या लग रहा है, थोड़ा मनन करने का प्रयास कीजिए। कृष्ण की भक्ति ही जीव का मुख्य कार्य है। मुख्य कार्य से क्या मतलब है, प्राइम, इंग्लिश में कहेंगे प्राइम। और आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पे लोग हमें क्या प्रचार करते हैं घरों पे, भक्ति करो, कौन मना कर रहा है भाई, लेकिन नौकरी भी करना है, परिवार भी करना है, ये भी करना है, वह भी करना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन यहां महाप्रभु क्या कह रहे हैं, मानव शरीर प्राप्त करके भक्ति करना महत्वपूर्ण है, बाकी सारी चीजें भक्ति को सपोर्ट करने के लिए होनी चाहिए। कितनी अलग तरह की, असली पापा जो शिक्षा दे रहे हैं वो तो काफी अलग से है ना, इधर के नकली पापा तो कुछ भी बोलते रहेंगे, नहीं बोलते, अरे भाई दो घंटा ऐसे जप करने की क्या जरूरत है, 2 मिनट कर लिए बहुत है, अब इतना मरने की क्या जरूरत है, एकादशी में खाओ मत और जप को मत कर, ये जप ही करते रहो इत्यादि इत्यादि। तो इससे पहले कि आप उनकी शिक्षा सुने या किसी की शिक्षा सुने, उससे पूछे कि जीवन का उद्देश्य क्या है। और अगर अभी भी नहीं समझ में आ रहा है तो बहुत सिंपल उदाहरण समझ में आ जाएगा। अगर कोई व्यक्ति आईएएस की तैयारी कर रहा है तो खाता नहीं है, सोता नहीं है, कपड़े भी धोता है इत्यादि कर, लेकिन उसका मुख्य कार्य क्या है, आईएएस की तैयारी करना। अब समझ में आ गया, कुछ दिक्कत है। और कोई उसमें कोई व्यक्ति मतलब दिक्कत बोलता है कि भाई तुम ये ही क्यों कर रहे हो, मेरी बातें समझ में आ रही हैं, क्या बोलते हैं कि अपना समय खराब कर रहा है। अरे आईएएस तो चलिए बहुत हो गया, एमबीबीएस की तैयारी करते हैं उसमें भी तो बच्चे मुख्यतः पढ़ते ही रहते हैं ना, आईआईटी की तैयारी करते लोग पढ़ते ही रहते हैं। मैं खाली कहने का मतलब है कि एक लक्ष्य लेकर चल रहे हैं तो उसमें बाकी सब कार्य सेकेंडरी होते हैं, खाना पीना सब कुछ सेकेंडरी होता है, मुख्य कार्य है उस प्रयोजन को प्राप्त करने के लिए उपयुक्त साधन को करना। और नहीं करने पर डांट पड़ती कि नहीं, पढ़ क्यों नहीं रहे हो। मुझे इतनी हंसी आती इसी बात पे कि हमारी बहन, हम नाम आ जा रहा है मुंह पे, लेकिन वो छोटी बच्ची को देख रही खुश होकर कि भाई सुबह से हमारी लड़की 10 से 3 पढ़ रही है, और आश्चर्य ये है कि वो ये नहीं समझ पा रही कि पढ़ क्या रही है, व्हाट इज राइट अलाइनमेंट इन एमएस वर्ड, व्हाट इज लेफ्ट एंड सेंटर अलाइनमेंट इन एमएस वर्ड। उसकी गलती नहीं, लेकिन मैं सोच रही थी क्या ज्ञान है बताइए, भौतिक रूप से भी यूजलेस है कि नहीं, उसकी डेफिनेशन याद कर, आज तक का भी डेफिनेशन याद किया एमएस वर्ड में, राइट अलाइनमेंट लेफ्ट अलाइनमेंट क्या होता है, उसी का श्रवण कीर्तन कर रहे हैं। आप लोगों को बहुत सिंपल सी बात लग रही है, कोई कर रहा है चैतन्य चरितामृत का पाठ, कोई तो नहीं कर रहा है। श्री प्रभुपाद जी का बहुत सुंदर शब्द है, इसको समझ में नहीं आता व्यक्ति को कि इस जगत से, जगत जेल की तरह है, उससे बाहर निकलना भक्ति के द्वारा करके बाहर निकल जाए ये मुख्य कार्य है, यहाँ फंसे रहना ये मुख्य कार्य नहीं है। ए सब साधने अति तुच्छ बल, कृष्ण भक्ति बिना तहा दीते नारे फल। इन सब साधनों का अत्यंत तुच्छ बल है, किनका? कर्म, अष्टांग योग, ज्ञान इत्यादि। कृष्ण की भक्ति के बिना ये कोई फल देते नहीं। अब जरा विचार कीजिए, एक बार कृष्ण बोलिए, एक बार बोलिए कृष्ण, फिर से बोलिए थोड़ा और बोरियत होकर बोलिए कृष्ण। तो मान लीजिए आप एकदम बोर होकर बोल रहे हैं कृष्णा, एक बार और बोलिए ठीक है कृष्णा। अगर ऐसे और मान लो गुस्से में बोले कृष्णा, ए कृष्णा, किसी भी तरह से नाम उच्चारण किया है तो बताओ कितने जन्म के पाप नष्ट होते हैं? अनंत जन्मों के। अब क्या कंपेयर करेंगे आप बताइए, क्या कंपेयर करेंगे? अरे भाई जब अगर ना भी रुचि हो, ये तो याद रहना चाहिए ना, कैसे भी नाम उच्चारण कर रहा है तो मुक्त हो रहा है, कैसे भी, कथम अपि। अब आप कंपेयर कर लीजिए, एक कृष्ण नाम से जितने पाप नष्ट हो जाते हैं उतना पाप भी करते नहीं पा रहे, कर नहीं पाएगा। लेकिन इतनी बुद्धि लोगों की जड़ है कि जब तक कुछ बड़ा आयोजन ना करे व्यक्ति कुछ, जब तक महाराज कहते जब तक हाको डाको नहीं हो, हा हो हा हा ना हो, तब तो लगता ही नहीं कुछ हुआ है। कृष्ण इसी से सब पाप नष्ट हो जाएगा, ऐसे कैसे हो सकता है? ये अश्रद्धा के कारण ही इनको लाभ नहीं मिलता है। तो इससे मैंने खाली ये बोला कि एक भक्ति का देखी सकते, तुलसी जी की केवल देखने मात्र से वैकुंठ की प्राप्ति होगी, दृष्टा स्पृष्टा तथा ध्याता, छूने मात्र से, है ना, प्रणाम करने से, पूजा करने से, नहीं श्रवण करने से लगा कि यार तुलसी, तुलसी पेड़ से प्रार्थना कर रहे हैं। तो शास्त्रीय श्रद्धा से युक्त होगा तो समझ में आएगा कि भक्ति अपने आप में बहुत बड़ा फल देने वाली है। भक्ति के बिना आत्म साक्षात्कार के अन्य सारे साधन दुर्लभ तथा तुच्छ हैं, दुर्बल तथा तुच्छ हैं। कृष्ण की भक्ति किए बिना ज्ञान तथा योग से वांछित फल प्राप्त नहीं हो सकता है। शास्त्रों में तात्पर्य कभी कभी सकाम कर्म, तार्किक ज्ञान तथा योग पर बल दिया जाता है। यद्यपि लोग इन विधियों का अभ्यास करने की प्रवृत्ति रखते हैं किंतु कृष्ण भक्ति का स्पर्श पाए बिना उन्हें वांछित फल प्राप्त नहीं हो सकता। दूसरे शब्दों में वास्तविक वांछित फल तो कृष्ण के प्रति सुप्त प्रेम को जगाना है। श्रीमद् भागवत में कहा गया है, इससे पहले जो कहा गया उसकी बात करें हम लोग, पहले एक चीज देख लें कि इस प्रकार से शास्त्र में भगवद गीता में ही कर्म योग, अष्टांग योग और ज्ञान योग के बारे में क्यों बताया, सीधे भक्ति के बारे में क्यों नहीं बताया? अधिकार, उनका अधिकार नहीं है भक्ति में, इसलिए बोला गया। ध्यान से सुनिएगा, कर्म योग उस व्यक्ति के लिए जो बहुत कर्मठ है, उसको कहो कि भाई 10 से 11 या जिस भी समय आप बैठ के कथा सुनो ना, हमसे नहीं हो सकता। कोई एक दो माला जप करो, वो नहीं हो सकता। कथा में आकर, कथा में रुचि ही भक्ति का अधिकार है। कुछ तो कथा सुने भगवान के बारे में, भी आप आगे सुनेंगे श्लोकों में महाप्रभु बताएंगे, अब कथा में ही नहीं बैठना चाहता। क्या आप ऐसे लोगों को जानते हैं? आप नए लोग लाओ, उनसे बैठा ही नहीं जाएगा, 5 मिनट भी कथा में नहीं बैठा जाएगा, है कि नहीं? और उनसे कहो कि एक माला जप करो, आप ऐसे लोगों को जानते हैं? एक माला भी उनको लगे कि ना, हम नहीं कर सकते। अच्छा, तो अब आप देखिए, कर्म लोग तो उनसे बोलेंगे कुछ आप अपना धन भगवान की सेवा में लगा दीजिए, तो ठीक है, वो अलग बात है। लेकिन देखिए, धन लगाना हमेशा कर्मयोग नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा। जैसे भी हमने बोला भक्तों के, आप भक्तों की सेवा के, वैष्णवों की सेवा के लिए आप कुछ धन दीजिए, तो ये कर्मयोग है ना जी? ये कर्म नहीं, ये भक्ति योग है। आप स्वयं स्वेच्छा से एकदम कॉन्शियस होकर, इससे हमारी भक्ति बढ़े, तभी तो लोग क्या कह सकते हैं, अपना धन दे रहे हैं ना। ये तो क्लियर है ना कि क्यों दे रहे हैं, तो ये भक्ति बढ़ाने के लिए कर रहे हैं ना, तो भक्ति हुई कि नहीं? मैं फिर बोल रहा हूं, ये कर्म योग नहीं है। वैष्णवों की सेवा के लिए आप कुछ धन देते हैं तो ये कर्म योग नहीं है, कभी भूल के मत सोचिएगा। आप लोग जो जप कर रहे हैं, ये कर्म योग नहीं कर रहे हैं, ये भक्ति योग है। कुछ क्लियर हो रहा है? लेकिन कुछ लोग हैं, जब आप कुछ नहीं कर सकते, वो कुछ पैसा कमा रहे हैं, उस धन को भगवान की सेवा में लगाना, भगवान की सेवा में कहें अच्छे कार्य लगा दे ऐसे करके, भगवान की सेवा मानकर, तो कर्म योग हो गया। कुछ समझ रहे हैं इस बात? अच्छा, और ज्ञान योगी कैसे? वो इतने तपस्वी हैं कि उनके कहते हैं भक्ति क्या होगा, उनको लग रहा है जब तक कुछ विशेष तपस्या नहीं करें तो नहीं, कुछ होने वाला नहीं है। ये सब लिखा है इसमें भक्ति सामे सिंधु में। और अष्टांग योगी किसी प्रकार की श्रद्धा होती है कि अभी हम अष्टांग योग करें, कुछ हट प्राणायाम करें, तो उनकी चेतना है इस प्रकार की, इसलिए प्रिस्क्राइब किया जा रहा है। कुछ समझ रहे हैं? ऐसा नहीं है कि भक्ति में कुछ कमी है, भक्ति कुछ फल नहीं दे पाएगी, इसलिए कर्म और ज्ञान का अनुशीलन करना चाहिए। मेरी बातें समझ में आ रही हैं? मान लीजिए कोई व्यक्ति का हृदय अशुद्ध है, काम क्रोध से मतलब युक्त है, तो आप कहे कि नहीं, हृदय को शुद्ध करने के लिए हम कुछ अष्टांग योग करें, तो यह भक्ति के प्रति अपराध होगा। मतलब हम ये कह रहे हैं कि भागवत और हरिनाम हमारे हृदय को शुद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं है। कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? भक्ति अपने आप में पूरी तरह समर्थ है, और अन्य जितने भी योग पद्धतियां हैं वह जीव को वैसे शुद्ध नहीं कर सकते जैसे भगवान की भक्ति करना। मेक सेंस? ठीक है। अच्छा, वांछित फल क्या है जरा देखना होगा। श्रीमद् भागवत ये आप समझ रहे हैं कि अन्य योग पद्धतियां जो जीव के लिए परम सुखमय फल है, जो जीव को सुखी कर सकता है, बेसिकली जीव को सुखी होना है। और यही प्रश्न भागवत में उठाया गया कि शास्त्रों का वह सार जो जीव को सुखी करते वो बताइए। छह प्रश्न कुछ साधार है। शास्त्रों का वह सार जो जीव को पूर्ण रूप से सुखी करते, ये प्रश्न था ना पहले, और यही प्रश्न अर्जुन भी पूछे थे ना, यह श्रेय निश्चितम सब बुरहितन में, मेरे लिए परम श्रेय क्या है ये बता दीजिए आप। दोनों लोग यही प्रश्न कर रहे हैं, परम श्रेय की प्राप्ति क्या है? तो परम श्रेय यही कि जीव आनंदमय हो जाए, क्योंकि आनंदमय होना हमारा स्वरूप है। तो उसका उत्तर देते हुए यह श्लोक बोले थे श्रील सुत गोस्वामी, एकदम क्लियर, न लेफ्ट न राइट, क्योंकि एकदम सीधा प्रश्न है, तो सीधा उत्तर दे रहे हैं। क्योंकि कोई सोचेगा मैं कर्म योग के द्वारा श्रेय की प्राप्ति करूंगा, कोई कहेगा मैं ज्ञान योग के द्वारा करूंगा, तो ना, केवल भक्ति के द्वारा जीव सुखी हो सकता है। तो उस पर बोलते हैं भागवत 1.2.6, सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे अहतुक्य अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसीदति। सवै वही, निश्चित रूप से वही, और पुंसाम मतलब सभी इंसानों के लिए, इसमें स्त्री पुरुष का भेद नहीं है, बच्चे बूढ़े का भेद नहीं, सभी के लिए परधर्म वही परधर्म है, अर्थात धर्म के वो अनुष्ठान ही परधर्म कहलाएंगे जिसमें कुछ नियमों का पालन कर रहा है, साधना भक्ति। यथा भक्तिर अधोक्षजे, जिससे भगवान अधोक्षज में भक्ति हो जाए, अधोक्षज मतलब जो इंद्रियों के परे हैं, जो इंद्रियों के जनित ज्ञान के परे हैं, उन भगवान अधोक्षज में हो जाए भक्ति। अधोक्षज अर्थात भगवान श्री कृष्ण, जीव गोस्वामी जी कहते हैं। अधोक्षज शब्द रिजर्व अर्थ है कृष्ण के लिए, आप ये नहीं कह सकते कि इंद्र अधोक्षज हैं। क्यों हैं? नहीं हैं, क्योंकि इंद्र अन्य देवताओं के इंद्रियों के गोचर हैं, वो दिख जाते हैं उनको, ब्रह्मा जी भी दिख जाते हैं, लेकिन केवल कृष्ण ही हैं या विष्णु ही हैं जो इन देवताओं की इंद्रियों के भी परे हैं। समझ में आ रहा है? कैसी भक्ति हो जाए? तो कह रहे हैं अहेतु की, अर्थात उसके बदले में कुछ चाहिए नहीं, रिवर्स में नहीं चाहिए कुछ। समझ में आ रहा है? कृष्ण की हम सेवा कर रहे हैं और उसके रिवर्स में कुछ चाहिए ऐसा नहीं। और ऐसी भक्ति अगर अहेतु की भक्ति होती है तो अप्रतिहता, अर्थात वह किसी उपाधि से बाधित नहीं होती। गृहस्थ है, ब्रह्मचारी है, वानप्रस्थ सन्यासी है, कोई भी है, स्त्री है, पुरुष, इसमें इस प्रकार का कोई रुकावट इस भक्ति में नहीं होता है। ठीक है, उससे क्या हो जाएगा? तो कह रहे हैं ययात्मा सुप्रसीदति, इससे जीव बहुत सुखी हो जाएगा। समान शब्दों में कहें कि ऐसी भक्ति जिसमें कोई अभिसंधि नहीं है, मतलब कुछ बैक में नहीं चाहिए, केवल कृष्ण को संतुष्ट करने की इच्छा है, ऐसी इच्छा अगर होती है तो जीव को भक्ति जब करता है इस प्रकार की, तो उसे बहुत सुख मिलता है। बहुत गंभीर श्लोक है, और परधर्म को ही साधना भक्ति कहा जाता है। और साधना भक्ति किसे कहा जाता है वैसे तुम सुनेंगे आगे, फिर बता दे रहा हूं। साधना भक्ति मतलब अपनी इंद्रियों से संपादित भक्ति जिसका लक्ष्य है भाव भक्ति। इससे मैं, आप लोग अपने ही कान से सुन रहे हैं या किसी और के कान से सुन रहे हैं? मैं अपने ही मुख से बोल रहा हूं या किसी और के मुख से बोल रहा हूं? दूसरे को पैसा दे करके आप नहीं श्रवण कर सकते। कुछ समझ रहे हैं? जैसे आप बोलते हैं ना, पंडितों को बिठा देते हैं, आप जपो राम नाम जपो, होता है ना घरों में, इतने हजार बार जप कीजिए, वो भक्ति नहीं कहलाती साधना भक्ति। समझ रहे हैं? अपने से जप करना होगा, अपने से श्रवण करना होगा, और लक्ष्य क्या होना चाहिए? भाव भक्ति। तो ये इसको साधना भक्ति कहते हैं, उसी को परधर्म कहते हैं। बाकी अगर भोग इच्छा से व्यक्ति भक्ति कर रहा है तो उसको परधर्म नहीं कहा जाएगा, वो सकाम भक्ति है, और अच्छी बात है, भक्ति किसी भी तरह से की जाए, लेकिन वो परधर्म नहीं। मेक सेंस? मान लो कोई कह के मैं संतान के लिए जप कर रहा हूं या और किसी चीज के लिए भागवत पढ़ रहा हूं, तो या कोई भी भक्ति का अंग कर रहा है लेकिन भौतिक लालसा से युक्त होकर कर रहा है तो वह परधर्म नहीं। थोड़ा थोड़ा बताया बताया मैंने, आगे पढ़ते हैं। मानव धर्म का वह है जिससे भगवान जैसे दिव्य भगवान की प्रेमा भक्ति मिल सके। ऐसी प्रेमा भक्ति निस्वार्थ और रुकावट रहित होनी चाहिए जिससे आत्मा की पूर्ण तुष्टि हो सके। अच्छा, एक बात आपने कभी सोचा है कि आत्मा को दुख कहां से मिल रहा है? नहीं समझ में आया श्लोक? हाँ, यही संस्पर्शजा भोगा दुख यो न एवते। तो जो भी दुख प्राप्त हो रहा है वह इंद्रिय विषयों से इंद्रियों के संपर्क के द्वारा। मेरी भाषा समझ में आ रहा है ना? तो आप बताइए कि इंद्रिय विषयों का इंद्रिय संपर्क कब तक होता रहेगा? नहीं, शरीर की बात नहीं है। जब तक भोग इच्छा, अगर भोग इच्छा नहीं होगी तो व्यक्ति कभी संपर्क नहीं करेगा। तो यानी कि भक्ति जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, ये जो दुख का स्रोत है वह वहां से दुख की सप्लाई वो कटती चली जाएगी और भाव स्तर पे एकदम जीरो हो जाता है, कोई भोग नहीं, पूर्ण आनंद में जीव रह जाता है। आप देखिए ना कि हम 24 आवर भक्ति करना मुश्किल होता है, कुछ तो इंद्रिय तृप्ति चाहिए भाई, ऐसे कैसे होगा, है कि नहीं? हाउ कैन वी लिव विदाउट सम सेंस, इतना तो बनता है भाई, इतना तो, हाउ कैन वी लिव विदाउट एटलीस्ट 2 जलेबीज, दैट इज टू मच, है कि नहीं? कुछ तो चाहिए ना। तो कह रहे हैं कि ऐसी प्रेमा भक्ति की अवस्था में कोई भी भोग की इच्छा नहीं रहती। हम लोग को निरुत्साह नहीं होना चाहिए, क्योंकि भक्ति करते ही आप देख रहे हैं कितनी सारी इच्छाएं गायब हो गई कि नहीं, कौन गायब किया? तो बाकी इच्छा कौन गायब करेगा? कृष्ण ही करेंगे। बस अपने को श्रवण कीर्तन में लगे रहना, जैसे जैसे भक्ति बढ़ती जाएगी भोग इच्छा अपने आप समाप्त हो जाएगी। भोग नहीं समाप्त होंगे जरूरी नहीं कि भोग समाप्त हो जाए, लेकिन इच्छा समाप्त हो जाएगी। भोग प्राप्त होते रह सकते हैं लेकिन व्यक्ति उसको निर्लिप्त भाव से भोग स्वीकार करता है। बहुत सारी बातें आज आ रही ना आज के डिस्कशन में, बहुत सारी बातें हैं। वस्तुतः कर्म ज्ञान तथा योग भगवत प्रेम को जागृत नहीं कर सकते। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कर्मयोग, ज्ञान योग, अष्टांग योग, ये हृदय का शुद्धिकरण कर देते हैं। कर्मयोग हृदय का शुद्धिकरण कर सकता है, लेकिन अगर आप कहें कि ये प्रेम दिलवा दे भगवान का, तो ना, भक्त्या संजातया भक्त्या, भक्ति करने से ही भक्ति आती है। तो अगर कोई कहे कि हमें क्लास समझ में नहीं आती है तो क्या करना चाहिए? क्लास में नहीं आना चाहिए, कर्मयोग करना चाहिए, है ना? ना, कथा सुनने से ही कथा समझ में आएगी। और आप देखेंगे जब सुनते रहेंगे तो अकस्मात पता भी नहीं चलेगा समझ में कैसे आने लगी। आपने ऐसा अनुभव किया है कि पहले तो लग तो रहा है कुछ कुछ बोल रहे हैं, ऐसे हिंदी जैसी तो लग रही है, लेकिन कुछ समझ में नहीं आता था। और आप जब करते रहिए, प्रसाद खाते रहिए, सुनते रहिए, और एकदम से स्विच ओवर हो जाता है। बल्कि ये होता है कि कुछ ईजी क्यों नहीं बोलते, कुछ कठिन क्यों नहीं बोलते, तो बहुत ईजी है। क्या आप लोग ऐसा अनुभव कर रहे हैं या क्या लगता है विजय प्रभु, कुछ अधिक समझ में आता है पहले से? क्या नाम है आपका? नाम बोले पीछे वाले मोहन प्रभु, क्या लगता है आपको? आपको पहले देखिए कि क्या बोल रहा है व्यक्ति, वही समझ में नहीं आता है, लेकिन आप जब करते रहिए, नियमित रूप से श्रवण करते रहिए, तो एकदम पिकअप करने लगता है व्यक्ति। मुझे पता है कि जो मैं बोल रहा हूं कुछ बातें तो ग्रहण ही नहीं हो पाती, क्या बोल रहे हैं, धर्म और उसमें नियम और उसमें पर धर्म और उसके क्या ना क्या ये वो, लेकिन एकदम से पिकअप होने लग जाएगा। आप देखिएगा, बस सुनते रहिए, इस प्रकार से आप खुद आश्चर्यचकित हो जाएंगे। अच्छा, कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? वैसे ये पूछूंगा नहीं कि क्या समझ में आ रहा है, ये बहुत डाउटफुल है ये बहुत डाउटफुल है कि क्या समझ में आ रहा है, लेकिन इतना तो समझ में आ रहा है कि भगवान के प्रेम, भगवान की भक्ति के अलावा प्राप्त किसी और साधन से नहीं हो सकता। इसके लिए भगवत भक्ति स्वीकार करनी होगी, और जो जितना ही भक्ति के प्रति उन्मुख होता है वह अन्य तथाकथित उपलब्धियों के प्रति उतना ही उदासीन होता जाता है। बहुत सुंदर लाइन श्रील प्रभुपाद जी की है, बहुत सुंदर लाइन। देखिए, कर्म जनरली कर्मकांड करके व्यक्ति कहाँ पहुंचता है? स्वर्ग पहुंचता है। ज्ञान कांड करके कहाँ पहुंचता है? मुक्त हो जाता है। तब देखेंगे, और अष्टांग योग करके प्राय अगर वो डिफ्लेक्ट नहीं होता है तो वो अष्ट सिद्धि प्राप्त करता है। तो जैसे जैसे व्यक्ति भक्ति कर रहा है, भक्ति में सामर्थ्य है उन सारे फलों को देने के लिए। स्वर्ग चाहिए, स्वर्ग मिल जाएगा, मुक्ति चाहिए, मुक्ति मिल जाएगी, और सिद्धियां चाहिए तो सिद्धियां भी प्राप्त हो जाएंगी। प्रभुपाद क्या कह रहे हैं यहाँ पे? उदासीन नहीं चाहिए। ये बात आगे जाकर के कहेंगे एक जगह पे। बिल्व मंगल ठाकुर जब से आप में भगवान कृष्ण मुकुंद है, आप में भक्ति हुई है, तो मुक्ति मूर्तिमान मुक्ति हाथ जोड़कर मेरे सामने खड़ी है सेवा करने के लिए। लेकिन भक्त उधर ध्यान नहीं देते। जैसे एक बात समझिए, हाँ आप लोग समझ सकते हैं, आप लोग द्वारका नहीं, गुजरात से यहाँ आ रहे थे वृंदावन, तो वृंदावन लक्ष्य था, ट्रेन से आ रहे थे ना आप लोग, तो बहुत सारे स्टेशन पड़े रास्ते में नहीं। क्या उन सभी स्टेशनों को आपने देखा कि नहीं? देखा होगा, अगर रात में नहीं आ रहे हैं, लेकिन उन सभी के प्रति उदासीन थे कि नहीं? और जो लोग उदासीन नहीं थे वो जहां ट्रेन रुक गई वो उतर गए। समझ में आ गया कि नहीं? अब तो समझ में आ गया होगा। तो जिस व्यक्ति की भक्ति का प्रयोजन है कि भाई मुझे भगवान के चरणों में प्रेम प्राप्त करना है, उसको ही सब स्टेशन दिखाई पड़ेंगे कि सिद्धि भी आ जाती है और अन्य चीजें भी आ जाती हैं, लेकिन वह उनसे प्रभावित नहीं होता है। भगवान के वचन है 11वें स्कंद में कि यद्यपि भगवान के विभिन्न विष्णु स्वरूपों पर ध्यान करने से विभिन्न प्रकार की सिद्धियां हो जाती हैं, और भगवान उसका वर्णन भी करते हैं, कहते हैं ना यह भक्त के लिए एक बाधा है, इधर ध्यान नहीं देना चाहिए, जब तक भगवान का प्रेम प्राप्त नहीं हो उसको दम नहीं लेना चाहिए, इन सब चीजों से हमारा संतुष्टि नहीं होगी, नहीं होगी, इसलिए कह रहे हैं उदासीन हो जाता है ना, उसको उसमें रस नहीं होता। महाराज बता रहे थे एक संत है ब्रज में, तो गुस्सा में आकर के बोलते हैं सारे धनी लोग हमारे ही पास आएंगे। मतलब उनके पास सब लोग धन देने के लिए आते रहते हैं, तो कहते हैं सारे धनी लोग हमारे ही पास आएंगे, ऐसे करके उनको मतलब उनका से भाव है इस प्रकार का। ध्रुव महाराज ने भगवान का साक्षात्कार करने के उद्देश्य से योगाभ्यास किया, किंतु जब उन्हें भक्ति में रुचि उत्पन्न हो गई तो उन्होंने देखा कि कर्म ज्ञान तथा योग से उन्हें कोई लाभ नहीं हो रहा है। तो भगवान बेसिकली भक्ति, प्रभुपाद जी बड़ा अच्छा बोलते हैं, अपने को निरुत्साहित नहीं होना चाहिए कि भक्ति करता रहे, एक दिन ऐसा आएगा जब कोई इच्छा नहीं रहेगी। और आप देख सकते हैं इस समय भी कितनी, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, कितनी इच्छाएं गायब हो गई भक्ति करके, यंग उम्र में ही, ऐसे तो नहीं हम लोग 50 साल से भजन कर रहे हैं या 60,000 साल से, सोचिए आप 60,000 साल तक जप करेंगे तो क्या होगा, प्रभु जी इतने दिन रुकाएंगे यहां पर? अरे 60 तो बहुत होता है, 50 साल भी जो हम लोग शेड्यूल फॉलो कर रहे हैं, 50 साल तो शायद किसके पास हैं पता नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, जितना भी समय है, कार्तिक में आप स्पीड कर सकते हैं, कार्तिक में जो भी भजन करते हैं वो कई गुना अधिक बढ़ जाता है, तो वो भी कर सकते हैं जैसे महाराज का हुआ था। लेकिन जो भी है सोचिए बहुत परिवर्तन आ जाता है अगर गंभीरता से नाम जप करें, भक्ति करें, कितना जीवन परिवर्तन हो जाता है। मैं तो वही सोच सोच के खुश हुआ जा रहा हूँ कि अगर अपराध कुछ विशेष अपराध नहीं किया और इसी स्पीड से जो करते रहे, जितनी स्पीड से कर रहे उतनी स्पीड से भी करते रहे तो भी कितना चित्त में परिवर्तन आ जाएगा। ठीक है, अब वह एक श्लोक कोट कर रहे हैं जिसको मैं पढ़ा चुका हूं, इसलिए बहुत व्याख्या नहीं करूंगा इसकी, अगर आपको डिटेल्ड सुनना है तो हम लोग, ये नारद जी का उपदेश है, ये हम लोग व्यासदेव जी को, तो इसकी व्याख्या हम लोग पहले ही कर चुके हैं, वहां पर आपको सुन सकते हैं, सुनेगा कौन आप? ठीक है, निष्कर्म्यमप्यच्युत भाव वर्जितम्,
निष्कर्म्यमप्यच्युत भाव वर्जितम्,
न शोभते ज्ञानमलम निरंजनम्,
न शोभते ज्ञानमलम निरंजनम्,
तुतः पुनः शश्वत भद्रमीश्वरे,
तुतः पुनः शश्वत भद्रम,
न चार्पितम् कर्म यदप्यकारणम्,
न चार्पितम् कर्म यदप्यकारणम्।
तो कह रहे हैं यहाँ पे नारद जी, नैष्कर्म्य, नैष्कर्म मतलब जहां पे कर्म नहीं होता, ज्ञान की स्थिति, अपि अच्युत भाव वर्जितम, यदि ज्ञान की स्थिति में व्यक्ति स्थित हो गया और वह भी अगर अच्युत भाव से वर्जित है, भगवान की भक्ति से हीन है, तो न शोभते वह अच्छी नहीं लगती है। ज्ञानम अमलम, ज्ञानम अलम निरंजनम, अलम मतलब पर्याप्त, तो न अलम शोभते वह अच्छा नहीं लगता। क्या अच्छा नहीं लगता? ज्ञानम निरंजनम। देखिए अंजन का अर्थ होता है लेप, आंखों पे लगाते ना लेप, तो हमारे हमारे ऊपर एक प्रकार का लेपन है, इसे उपाधि कहा जाता है। स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर दोनों ही उपाधि हैं, ये सब समझ में आ रहा है? उपाधि मतलब ये देह, तो ये भौतिक देह और आध्यात्मिक सूक्ष्म देह, तो ये दोनों से अगर किसी का चित्र आवृत आवरण से हट गया है, मतलब वह स्थूल देह और सूक्ष्म देह से अपनी पहचान करना बंद कर दिया है ज्ञान के अभ्यास के द्वारा, लेकिन भगवान की भक्ति से शून्य है, भगवान का भाव नहीं है, भगवान के प्रति समर्पण नहीं, तो नारद जी कहते न अलम शोभते, वह भी पर्याप्त रूप से अच्छा नहीं लगता। कुतः पुनः शश्वत अभद्रम, तो जो हमेशा निरंतर, शश्वत मतलब निरंतर, जो निरंतर अभद्र है, ईश्वरे ना चार्पितम, भगवान को समर्पित नहीं है, तो वह कर्मकांड, कर्म मतलब कर्मकांड, यद्यप्य कारण या फिर निष्काम कर्मयोग, कर्मकांड या फिर निष्काम कर्म अगर ईश्वर को समर्पित नहीं, तो वह तो शश्वत अभद्रम मतलब साधन काल में भी जमेला हा 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 करते रहो, और जब उसकी साध्य प्राप्ति होती है, स्वर्ग प्राप्ति हो गया, तो भी दुख है, तो वह कहां से अच्छा लगेगा। कुछ कैमित तो समझ रहे हैं, जब मुक्ति की अवस्था, ज्ञान की अवस्था, जिसमें व्यक्ति सारी भौतिक आसक्तियों से रहित है, वह भी अगर भगवान की भक्ति से युक्त ना हो तो अच्छा नहीं लगता, तो फिर कर्मकांड या निष्काम कर्म, दोनों में से कुछ भी, अकारणम मतलब निष्काम कर्म, अगर कृष्ण को समर्पित नहीं है तो कैसे अच्छा लग सकता है, वो तो पहले से ही खराब है। कुछ समझ में आ रहा है कि कर्मकांड को खराब क्यों कह रहे हैं, भाई उसमें बहुत ईर्ष्या है, मैं अगर इंद्र बनना चाहता तो इंद्र की पोस्ट केवल एक ही है, चलिए इंद्र तो बहुत दूर दिख रहा है, इंद्र तो नहीं दिखता। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कुछ तपस्या करता है किसी कॉम्पिटिशन में सेलेक्ट होने के लिए, और उसमें कुछ सीट्स होती हैं, और आपस में लोग द्वेष करते हैं, अगर मुझे उत्तर आता है तो बगल वाले को नहीं बताता हूँ, या बताते हो कि नहीं मेरे से पूछ लो हम उदार हैं, करता है कोई ऐसा, रेयरली को करता होगा, कोई भी नहीं करता स्टूडेंट, तो यहाँ कॉम्पिटिशन है ना कुछ सीट्स के लिए, तो अगर वो बात समझ में आती नहीं तो नहीं, तो वास्तविक रूप से लोग कर्मकांड इत्यादि करते थे स्वर्ग प्राप्ति करने के लिए, लेकिन वहां पे द्वेष है, और देवता भी जब कोई देखते हैं आ गया तो ये क्यों आ गया, ठीक है आ गया है तो, और जैसे ही उसका पुण्य समाप्त होता है तो वो लात मार देते हैं, नीचे भेज देते हैं। या भगवद गीता के 8वें अध्याय में पढ़ चुके हो मतलब मैं पढ़ा चुका हूँ, पढ़ा तो है कि नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन एक चक्र है इस प्रकार का, व्यक्ति कर्मकांड करता है, स्वर्ग जाता है, स्वर्ग में कुछ समय के लिए रहता है, फिर वो बारिश के रूप में नीचे आता है, समझ रहे हैं, फिर उसके अन्न में जाता है, अन्न से वह पुरुष के शरीर में जाता है, पुरुष से स्त्री के शरीर में जाता है, फिर शरीर प्राप्त होता है, फिर कर्मकांड, और फिर तो इस चक्र में बना रहता है। हम लोग पढ़ा चुके हैं बहुत पहले, 8वें अध्याय में पढ़ाया था इस बात को। तो ये सब जब लात मार के नीचे गिराया जा रहा है तो पसंद नहीं कर रहा, यही तो अर्थ होगा ना। तो यहाँ पे वो इस प्रकार से कह रहे हैं। अब उसके बाद इसका अनुवाद पढ़ के देखते हैं। जब शुद्ध ज्ञान समस्त भौतिक आकर्षण से परे होता है किंतु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण को समर्पित नहीं होता, तो यह भौतिक मल से रहित होते हुए भी अधिक सुंदर नहीं लगता, तो फिर सकाम कर्मों का क्या लाभ जो प्रारंभ से कष्टप्रद और क्षणिक हैं, यदि वे भगवान की भक्ति में सेवा में काम नहीं आते, भला वह किस तरह अत्यंत आकर्षक हो सकते हैं। समझ में आया, कर्म और ज्ञान अगर भगवान की भक्ति से रहित रहते हैं तो अच्छे नहीं लगते, ये महाप्रभु कहने, तात्पर्य पढ़ेंगे फिर रुकेंगे इसके बाद। यह उदाहरण श्रीमद् भागवत का है। अनेक वैदिक ग्रंथों की रचना करने के बाद भी व्यासदेव अत्यंत खिन्न थे, याद आ रहा है, पढ़ा चुके हैं इसको। अतएव उनके गुरु नारद देव ने उनसे कहा कि वे तभी सुखी हो सकते हैं यदि वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के कार्यकलापों के विषय में लिखें। तब तक श्रील व्यासदेव ने वेदों के कर्मकांड तथा ज्ञानकांड अनुभागों की रचना की ही रचना की थी, उन्होंने उपासना कांड या भक्ति के विषय में नहीं लिखा था। इस तरह उनके गुरु नारद ने उनकी गलती को सुधारा और उन्हें उपदेश दिया कि वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के कार्यकलापों के विषय में लिखें। इसलिए व्यासदेव ने श्रीमद् भागवत लिखना प्रारंभ किया। श्लोक तो इसी के संबंध में, लेकिन लग रहा है कि आप लोग थक गए हैं, तो फिर कल से शुरू। क्या लग रहा है, थक गए हैं, पानी पीना है कुछ ऐसा? ये बहुत सुंदर श्लोक है, सुनना चाहेंगे आप लोग? नींद आ रही है, नहीं थके हैं? अरे तो आप जूम पे तो आप कैसे भी सुन सकते हो, बैठ के सुनना थोड़ी ना हो सकता, बेड पे लेट करके सुन रहे हो, जब बोलता हूँ कि भाई थक गए तो जग गए उसके आस फिर कथा चालू कह रही हूँ, मजाक की बात है, लेकिन श्लोक बहुत सुंदर है। ये स्वयं सुखदेव गोस्वामी जी बोल रहे हैं, इसको गाया जाए तबियत से, बहुत सुंदर गान है, गाया श्लोक है। तपस्विनो दान परा यशस्विनो,
तपस्विनो दान परा यशस्विनो,
मनस्विनो मंत्र विदह सुमंगला,
मनस्विनो मंत्र विदह सुमंगला,
क्षेमं न विन्दन्ति विनाय दर्पणम्
क्षेमं न विन्दन्ति विनाय दर्पणम्
तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः
तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः।
कैसे गाते हैं इसको? वैसे भी गा सकते हैं ना। तप कैसे गा रहे थे? तपस्विनो दान तपस्विनो दान परा यशस्विनो
तपस्विनो दान परा यशस्विनो
मनस्विनो मंत्र विदह सुमंगलाः
मनस्विनो मंत्र विदह सुमंगलाः
क्षेमं न विन्दन्ति विनाय दर्पणम्
क्षेमं न विन्दन्ति विनाय दर्पणम्
तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः
तस्मै श्रवसे नमो
तपस्विनो दान परा यशस्विनो
तपस्विनो दान परा यशस्विनो
मनस्विनो मंत्र विदह सुमंगलाः
मनस्विनो मंत्र विदह सुमंगलाः
क्षेमं न विन्दन्ति विनाय दर्पणम्
क्षेमं न विन्दन्ति विनाय दर्पणम्
तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः
तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः
तपस्विनो दान परा यशस्विनो
तपस्विनो दान परा यशस्विनो
मनस्विनो मंत्र विदह सुमंगलाः
मनस्विनो मंत्र विदह सुमंगलाः
क्षेमं न विन्दन्ति विनाय दर्पणम्
क्षेमं न विन्दन्ति विनाय दर्पणम्
तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः
तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः।
एक भक्त पूछ रहे हैं, क्या व्यक्ति गृहस्थ जीवन में नहीं हो सकता है? केवल ब्रह्मचारी एंड सन्यासी जीवन में ही वह भक्ति संभव है। भागवत में 12 महाजन में कितने ब्रह्मचारी हैं? अब केवल घर छोड़ने में बात कर रहे हैं हम। केवल वैसे 12 महाजन में 5 ब्रह्मचारी ही हैं, ऐसी बात नहीं है। और घर छोड़ने की बात हम कब कर रहे हैं? आप घर अभी तो 62 लोग तो घर पे ही हैं, तो घर छोड़ने की बात कहाँ कर रहे हैं? घबराइए मत, आपको घर छोड़ने के लिए नहीं बोल रहे हैं। जिन लोगों को घर छोड़ना होता है उन्हें बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, मुझे बोला नहीं गया था। और जिनको नहीं छोड़ना होता वो बोलने से छोड़ते भी नहीं है, है कि नहीं? वो छोड़ रहे हैं सब लोग, सब छोड़ दे रहे हैं घर। घर में रहके भक्ति करिए, स्थाने स्थिता, घबराइए मत। स्थाने स्थिता, अपने स्थान में रहकर भगवान के बारे में श्रवण कीजिए। ये तो प्रत्यक्ष देखा जाता है, जो उसको छोड़ना होता है वो तो छोड़ ही देता, कौन रोक रहा है उसको? तो ये सब बात नहीं है। चलिए श्लोक देखिए। लोग बड़ा कंफ्यूजन है, मैं अभी तक के डिस्कशन में कहां बोला घर छोड़ दीजिए? बोला हूं घर छोड़ दीजिए। हाँ, भौतिक कार्य करना हमको मिनिमाइज करना है, ये बात ध्यान रखना। गृहस्थ जीवन में भी व्यक्ति को यह नहीं सोचना चाहिए कि हमें भोग मैं जीवन बिताना। सोच सकता है और कर भी सकता है, लेकिन मिलेगा ठेंगा, कुछ मिलेगा नहीं वापस में, फिर दोबारा जन्म मृत्यु के चक्र में चले जाएंगे। तो चाहे किसी भी आश्रम में रहे व्यक्ति, भगवान की भक्ति करना मुख्य प्रयोजन है, ये समझना होता है। ठीक है, आगे उसको लोग देखते हैं। जो लोग कठोर तपस्या करते हैं, जो दान में अपना सर्वस्व दे डालते हैं, और जो अपने पुण्य कर्म के लिए प्रसिद्ध हैं, जो ध्यान तथा ज्ञान में लगे हैं, और जो वैदिक मंत्रों का उच्चारण करने में अत्यंत पटु हैं, वे यदि अपने कर्मों को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा में समर्पित नहीं करते तो वे कोई शुभ फल नहीं प्राप्त कर पाते, भले ही वे पुण्य कर्म में क्यों न लगे हों। अतएव मैं उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को बारंबार सादर नमस्कार करता हूं, जिनकी महिमा सदैव कल्याणप्रद है। यह उद्धरण भी श्रीमद् भागवतम से है। यह सुखदेव गोस्वामी जी की प्रार्थना है। श्रीमद् भागवतम बोलने से प्रार्थना पहले की है, बहुत सुंदर प्रार्थना है। तपस्विनो, जो लोग तपस्या में लगे, दान पर दान कर रहे हैं, सभी लोग भगवान को ही दान कर रहे हैं ना, समझ में आ रहा है? सभी लोग भगवान को दान नहीं कर रहे, या भगवान की सेवार्थ भी दान नहीं कर रहे हैं। यशस्विनो अर्थात जो बहुत यशस्वी हैं जगत में। मनस्विनो, मनन करने में, चिंतन करने में बड़े एक्सपर्ट, जैसे कि हमारे अल्बर्ट आइंस्टीन या और भी कोई बहुत हैं जो जो कहते हैं स्टीफन, नाम याद स्मरण नहीं करना चाहिए, लेकिन स्टीफन हॉकिंग्स इत्यादि ऐसे बहुत लोग मननशील हैं जगत में, बहुत विचार करते रहते हैं। मंत्र विदह जो मंत्र उच्चारण करने में श्रेष्ठ हैं, मुझे ऐसे याद आ रहा है कि हमारे मोहल्ले में एक बार पुस्तक वितरण कर रहा था, मैं बता चुका हूँ इस बात को, लेकिन बार बार ये बात याद आ जाती है कि वह है उनके पास गया, हमने कहा कृष्णा बुक लीजिए, बुक लीजिए, कहते हैं हम बेटा मुझसे तुम उपनिषद के कोई भी मंत्र पूछ लो, कोई पूछ लो हम सब बता देंगे। तो मैंने कहा आपको हरे कृष्ण मंत्र पता है? कहते नहीं वो तो नहीं पता, मैं कुछ बोला नहीं। उन्होंने कहा कृष्णा बुक लीजिए आप। समझ रहे हैं? और ये तो बिल्कुल साक्षात बात है, हमारे घर के ही सामने वेद मंदिर, उसमें बाबा जी मतलब वो जो प्रभु जी थे, पूरा जीवन कट गया वेद के मंत्र पढ़ते पढ़ते। मैं जानबूझ के उनको चिकोटी समझते ना परेशान करने के लिए पूछा, भगवान कौन है? ईश्वर निराकार है। कोई फल नहीं प्राप्त हुआ भाई। जैसे भी आप लोग बढ़िया से क्या करते हैं, क्या बना था वो पोंगल, पोंगल खा के आए थे, पोंगल को आंख में डालने, नाक में डालने तो क्या लाभ होगा ये बताइए? जब तक वो पेट में नहीं पहुंचेगा कोई संतुष्टि नहीं मिलने वाली ना। बस उसी तरह समझ लीजिए, अगर भगवान को ही संतुष्ट नहीं करना चाहते तो इन सारी चीजों का कोई प्रयोजन नहीं है, समझ रहे हैं? और यही बात आप दशम स्कंद में सुनने वाले हैं, जब ब्राह्मण लोग, सोचिए कल्पना कीजिए कि भगवान के पार्षद, भगवान के द्वादश गोपालों में से कोई व्यक्ति आपके पास आए और कहे कि कृष्ण बलराम यही पास में है और आपको कुछ वो चाहते हैं आपसे, कुछ भोजन की सामग्री, बताइए कौन मना करेगा? कोई मूर्ख ही है जो मना करेगा। और उन्हें क्या कहा, ये रिस्पांस दिया, कुछ नहीं कहा। कुछ नहीं कहा का मतलब इग्नोर कर दिया। तो भगवान के पास जब वो आए तो भगवान कहे देखो अब भिक्षा मांगने में तो होता ही है, कभी कभी नहीं मिलती है, तो उसके लिए दुखी नहीं होना चाहिए, आप उनकी पत्नियों के पास चाहिए, लेकिन उनको ये मत कहिए कि हम भूखे हैं, नहीं तो वो बहुत उद्विग्न हो जाएंगे, बहुत दुखी हो जाएंगे। फिर भी जाकर के बोलते हैं, आप देखें कृष्ण भगवान में लिखते हैं कि कृष्ण बलराम बड़े भूखे हैं तो कुछ दीजिए, तो वो एकदम आप जानते हैं ब्राह्मण पत्नियां बिल्कुल प्रेम आप प्रेम से भर गई थी, सारा सामग्री लेकर के, वो पूछी भी नहीं पतियों को, सारा सामान लेकर के वह कृष्ण बलराम के पास आ गई। तो अब पूरी कथा जानते हैं, तो अब इस प्रकार से देख रहे हैं कि उन बाद में जब हम पत्नियां जाती हैं ब्राह्मणों के पास तो कहते हैं धिक्कार है हमारे ब्राह्मण होने का, धिक्कार है हमारे ब्रह्मचारी के रूप में ट्रेनिंग लेने का, भाई जिस यज्ञपति के लिए हम सेवा करना इसके लिए यज्ञ कर रहे थे वही हमसे मांगने आए और हम नहीं दे पाए। और एक और बात देखिए उसमें लिखा बहुत सुंदर कि देखिए ब्राह्मण की पत्नियां कंस से भयभीत नहीं थी इसलिए कृष्ण के पास गई, बाद में ब्राह्मण लोग अपनी पत्नी को स्वीकार कर भी लिए और उनको सम्मान भी दिए, लेकिन कंस के भय से वो जा नहीं पाए कृष्ण के पास। हम लोग कुछ अजीब सा नहीं लगता? सोचिए मान लीजिए कृष्ण बलराम कितनी 200-300 फीट की दूरी पे होंगे या जो भी थोड़ा दूरी पे होंगे, कौन व्यक्ति दौड़ के नहीं जाएगा? रोज नहीं जाते हैं कुछ लोग है कि नहीं, कुछ लोग हमारे तो सब आश्रम में जा रहे हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा हो सकता है कि लोग इस अज्ञान में रह जाए कि भगवान का दर्शन करने जाना होता है। खैर हम तो उधर उधर नहीं जा रहे हैं, पहले इतनी बात कर रहे हैं कृष्ण एकदम पास में है और फिर भी नहीं गए कंस के भय से। तो एक आश्चर्य होगा ना कि ब्राह्मण पत्नियों को और उनको खुद को भी आश्चर्य हो रहा था, अरे इनको तो कोई ज्ञान नहीं है, ये कोई गुरु के पास कुछ वैदिक मंत्र वंत्र नहीं पढ़ी तो इस प्रकार से कैसे कृष्ण के प्रति आकर्षण होगा? क्या उत्तर है? श्रवण। किससे? गोपियां जो दूध वगैरह बेचने के लिए मथुरा जाती थी तो उनसे श्रवण करके भगवान में ऐसा प्रेम हो, समझ रहे हैं? श्रवण कीर्तन से प्रेम हो गया, लेकिन बाकी सारे तपस्वी होने से, मंत्रविद होने से क्या प्रयोजन सिद्ध हुआ? कुछ नहीं, कृष्ण को संतुष्ट नहीं कर पाए, समझ में आ रहा है? क्षेमम न विन्दंती, उन्हें कोई लाभ नहीं मिलता, क्षेम मतलब परम श्रेय की प्राप्ति कुछ नहीं होती, विना यदर्पणम, यदि अपनी तपस्या को वह कृष्ण को अर्पित नहीं करते, यदि अपने दान को धन को भगवान की सेवा में नहीं लगाते, यदि यश है मंत्र है मनन जो कुछ भी है वह कृष्ण को नहीं अर्पित करते तो ना वह किसी को वह कल्याणप्रद नहीं होता। इसलिए कह रहे हैं तस्मय, उन भगवान को मैं प्रणाम कर रहा हूं जो सुभद्र श्रव से, जिनका यश सुनने से ही व्यक्ति का कल्याण होता है। तो देखिए हम लोग ये कितना सुंदर श्लोक है, रोज हम लोग भागवत के श्लोकों को बोलते हैं, हरे कृष्ण मंत्र बोलते हैं और समझ में आए तो बहुत आगे की बात है, केवल सुनने मात्र से जीव का कल्याण हो रहा है। और जीव का कल्याण आप समझ रहे हैं, भोग बुद्धि का नाश और भगवान की भक्ति लग, भगवान की भक्ति में बुद्धि लग रही है, यही जीव का परम कल्याण है। तो ये कैसे होता है? भगवान के बारे में श्रवण कीर्तन करने से। तो समझ में आ गया, श्रवण कीर्तन भगवान का पूरी तरह से समर्थ है जीव के अविद्या को नष्ट करने में, इसका मंगल नष्ट करने में, और ये सारे साधन बिना भक्ति के यूजलेस हैं, ये कहना चाहते हैं। कौन कह रहा है ये? सुखदेव गोस्वामी जी कह रहा है। बहुत अच्छे श्लोक हैं, बहुत अच्छे अच्छे श्लोक हैं। अब क्या करें, पांच तो दो तीन मिनट और पढ़ेंगे फिर जाएंगे। केवल ज्ञान मुक्ति दीते नारे भक्ति बीने, कृष्णोन्मुख से ही मुक्ति होए बिना ज्ञान। केवल ज्ञान, केवल ज्ञान का अनुशीलन करे, मुक्ति दीते नारी भक्ति बिने, भक्ति के बिना केवल अगर ज्ञान का अनुशीलन कर रहा है आत्मा क्या है, मैं आत्मा से अलग पदार्थ क्या है, तो मुक्त नहीं होगा। लेकिन कृष्णोन्मुख से ही मुक्ति, अगर कोई जीव कृष्ण की सेवा में लग जाता है, कृष्णोन्मुख हो जाता है, तो वो मुक्ति तो बिना ज्ञान के ही प्राप्त हो जाती है। जानते हैं नामाभास से मुक्ति हो जाती है। क्या अजामिल मुक्त नहीं हुआ? वह तो इसको तो यह भी पता नहीं था कि मैं भक्ति कर रहा हूं, अनजाने में ही बेटे का नाम नारायण नारायण बोलने मात्र से वह मुक्त हो गया। भक्ति का कहां है? भक्ति तो नहीं कह सकते कि भक्ति जानबूझ के कर रहा हो, अनजाने में भक्ति कर रहा था लेकिन जानबूझ के तो भक्ति नहीं कर रहा था। भक्ति के बिना कोरा ज्ञान मुक्ति दिलाने में समर्थ नहीं है। दूसरी ओर यदि कोई भगवत भक्ति में लगता है तो वह ज्ञान के बिना भी मुक्ति प्राप्त कर सकता है। ज्ञान मतलब निर्विशेष ब्रह्म का ज्ञान, अर्थ यह नहीं कि आपको यह भी ज्ञान ना हो कि भगवान कौन है। इसका अर्थ यह नहीं है कि भगवान के गुणों को ना श्रवण किया जाए। जब भगवान के गुणों को श्रवण ही नहीं करेंगे तो भक्ति क्यों करेंगे, ये बताइए। अब यही नहीं सुना है कि हरे कृष्ण मंत्र क्या है तो जपेंगे कैसे? तो ज्ञान कर समझ रहे हैं निर्विशेष ब्रह्म का अनुसंधान। निर्विशेष ब्रह्म नहीं समझते हैं? अरे सब लोग ऐसे देख रहे थे एकदम निर्विशेष ब्रह्म क्या है? निर्विशेष ब्रह्म अवनीश प्रभु बताइए, अवनीश प्रभु बताइए कि निर्विशेष ब्रह्म क्या होता है? निराकार समझना, जानवा माता जी को पता है निर्विशेष ब्रह्म नहीं पता है? निराकार मतलब हाँ, भगवान श्री कृष्ण के शरीर से निकलने वाली दिव्य ज्योति, बस उसको ही वो देखते हैं, उसी का ध्यान चिंतन करते हैं, कृष्ण के रूप ध्यान नहीं करते, उसको निर्विशेष ब्रह्म कहते हैं। तो ऐसे ज्ञान से कि कोई ना जाने तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो ऐसे ही मुक्त हो जाएगा। भगवान का नाम जब करेगा अपने आप मुक्त हो जाएगा, उसको अलग से कुछ निर्विशेष ब्रह्म का अनुसंधान रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। क्या हम बहुत धुआंधार बोल रहे हैं? समझ में आ तो रहा होगा, ऐसे मुश्किल नहीं होगा। केवल ज्ञान से मुक्ति प्राप्त नहीं की जा सकती। भले ही कोई ब्रह्म तथा पदार्थ में अंतर बताने में सक्षम हो जाए, किंतु यदि कोई भूल से यह सोचे कि जीव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के समकक्ष है तो उसकी मुक्ति में अवरोध आ जाएगा। चूंकि अपने आप को परम पुरुष या परम सत्य मानना अपराध है, अतः इसके कारण मनुष्य पुनः भौतिक जगत में आ गिरता है। जब ऐसा व्यक्ति शुद्ध भक्त के संपर्क में आता है तब वह भवबंधन से वास्तव में मुक्त हो जाता है और भगवान की सेवा में लग सकता है। बिल्व मंगल ठाकुर की एक प्रार्थना यहाँ प्रासंगिक होगी। आ हा हा, इस श्लोक आगे ही तो बोल रहा था मैं, लेकिन इससे पहले समझ लीजिए इस बात को। कुछ लोग इस प्रकार का अनुशीलन करते हैं, ये पदार्थ है ये आत्मा है, ये पदार्थ है ये आत्मा है, ये आत्मा नहीं है, नेति नेति नेति, ये आत्मा नहीं है, ये वेबकैम आत्मा नहीं है, ये मिक्सर आत्मा नहीं है, ये आत्मा नहीं है, इसे कहते हैं नेति नेति, ये नहीं है ये नहीं है। तो ऐसा अनुशीलन करते करते ज्ञान का कोई सोचने लग जाए कि मैं ही ब्रह्म हूं और मैं ही भगवान हूं, तो बस वही अपने नानवे वाला सांप देखते हैं ना, कोई सोचने लग गया कि मैं भगवान हूं और वापस आकर नीचे गिर जाएगा। तो ये भावना कभी नहीं होनी चाहिए कि मैं भगवान बन सकता हूं। ये इसलिए नहीं आ रही हमारे मन में क्योंकि इतना बॉम्बिंग हुआ है हमारे दिमाग के ऊपर, इतना प्रभुपाद जी बॉम्बिंग किए, बम गिराए, तुम भगवान के दास हो, तुम भगवान के शाश्वत दास हो, तुम हमेशा से भगवान के अधीन हो, या तुम माया के अधीन या कृष्ण के अधीन। सुनते ना, बॉम्बिंग कर करके हम एकदम नीचे बैठ जाते, ना भाई हम कृष्ण के दास ही है, हम कभी भगवान नहीं बन सकते। और ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि ऐसे व्यक्ति की भगवान सहायता करते हैं। ठीक है, भक्त ये बिल्व मंगल ठाकुर जी बोल रहे हैं कि भगवान अगर आप में मेरी स्थिर भक्ति हो जाए तो मुक्ति हाथ जोड़ करके मेरी प्रतीक्षा कर रही है, सेवा सेवा कर सेवा प्राप्त हो जाए इस भक्त की। देखिए कितना सुंदर श्लोक है।
भक्ति स्त्वयि स्थिरतरा भगवान यदि स्या
भक्ति स्त्वयि स्थिरतरा भगवान यदि स्या
देवेन नः फलति दिव्य किशोर मूर्ति
देवेन नः फलति दिव्य किशोर मूर्ति
मुक्ति स्वयं मुकुलितांजलि सेवते स्मा
मुक्ति स्वयं मुकुलितांजलि सेवते स्मा
धर्मार्थ काम गतयः समय प्रतीक्षा
धर्मार्थ काम गतयः समय प्रतीक्षा
फिर से गाया जाए
भक्ति स्त्वयि स्थिरतरा भगवान यदि स्या
भक्ति स्त्वयि स्थिरतरा भगवान यदि स्या
देवेन नः फलति दिव्य किशोर मूर्ति
देवेन नः फलति दिव्य किशोर मूर्ति
मुक्ति स्वयं मुकुलितांजलि सेवते स्मा
स्वयं मुकुलितांजलि सेवते स्मा
धर्मार्थ काम गतयः समय प्रतीक्षा
धर्मार्थ काम गतयः समय प्रतीक्षा
हे प्रभु हे कृष्ण यदि कोई संकल्प के साथ आपकी शुद्ध भक्ति में लगता है तो आप अपने आदि दिव्य किशोर रूप में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के तौर पर दृष्टि गोचर होते हैं। जहां तक मुक्ति का सवाल है वह तो भक्त के समक्ष उसकी सेवा करने के लिए हाथ जोड़े खड़ी रहती है। धर्म अर्थ तथा इंद्रिय तृप्ति बिना अलग प्रयास की स्वतः प्राप्त हो जाते हैं। इसके अगले और श्लोक आगे देखेंगे, इस श्लोक को थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। भक्ति स्त्वयि, त्वयि मतलब आप में, और भक्ति स्थिर तरह, यदि आप में एकदम स्थिर दृढ़ भक्ति हो जाए भगवान यदि स्याद, यदि स्याद मतलब यदि हो जाए भगवान, देवेन न फलति दिव्य किशोर मूर्ति, न नहीं है न उसके हृदय में भगवान श्री कृष्ण की दिव्य किशोर मूर्ति स्फुरित होने लगती है, भगवान दिखने लगते हैं। तो ऐसे भक्त के लिए क्या कर रहे हैं, मुक्ति स्वयं मुकुलितांजलि सेवित स्मान, मुक्ति दोनों हाथ जोड़ करके बोल रही है एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। लेकिन भक्त उधर देख ही नहीं रहा है, स्टेशन वाला एग्जांपल दिया ना, जो स्टेशन पीछे छूट गया उधर कौन याद रखता है, नहीं याद रखता। इसी प्रकार से मुक्ति तो बीते हुए स्टेशन की तरह पहले ही छूट जाती है। भक्त लोग, हमने सुना ही है, भक्त लोग अपने आप ही मुक्त होते हैं। इहा यस्य हरिदास से कर्मणा मनसा गिरा निखिलासु अपि अवस्थासु जीवन मुक्त सोचते, जो कर्म से मन से वाणी से कृष्ण की सेवा करने की इच्छा ही कर रहा है तो वह मुक्त है, करने की तो बात ही छोड़ दीजिए। और क्या कह रहे हैं, धर्मार्थ काम गतयः समय प्रतीक्षा, धर्म अर्थ और काम गत जितने भी भोग हैं वह समय की प्रतीक्षा करते हैं, हमें तो टाइम ही नहीं दे रहे हैं। समझ में आ गया, समय प्रतीक्षा ना, कब टाइम मिलेगा इंटरव्यू ले लें भाई, हम इंटरव्यू मिल जाए हम भक्त का, हमें भी कुछ सेवा का मौका मिल जाए, ये बात। इसीलिए देखिएगा भक्ति करेंगे, भक्ति करने से भौतिक सुविधाएं अपने आप प्राप्त होती हैं, लेकिन भक्त भले उन सुविधाओं को स्वीकार भी कर रहा है लेकिन विवेक को नहीं खोता है कि हम इन सुविधाओं के लिए भक्ति नहीं कर रहे हैं। याद आ रहा है कुछ, समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं, सुविधा प्राप्त हो जाएंगी लेकिन भक्त जान रहा है कि मैं भक्ति प्राप्त करने के लिए भक्ति कर रहा हूं, ये सब तो बाई प्रोडक्ट है, इनको प्राप्त करने के लिए मैं नहीं कर रहा हूं। डज इट मेक सेंस। उसके बाद बहुत सुंदर श्लोक ब्रह्मा जी का, वो हम कल चर्चा करेंगे, जल्दीबाजी नहीं करना चाहते। बहुत सुंदर श्लोक है कि अगर कोई व्यक्ति भक्ति के पथ को छोड़ देता है और अन्य ज्ञान आदि के प्रयास करता है तो क्या मिलता है, हिंट है, थोथा भूसा। थोथा भूसा उसको मिलेगा। तो भूसा हम लोग अगर खाना चाहते हैं, भूसे का डिफ्रेंसिएशन जानना चाहते हैं तो ब्रह्मा जी के अनुसार हम कल सुनेंगे।